ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय है मनन, चिंतन और लेखन। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन से परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये मन ना होता तो अच्छा था। तो लोग मन को मारने की, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन वास्तव में एक अविनाशी वरदान है। क्योंकि दुनिया में जो लोग महान काम करते हैं वो मन के बल से ही करते हैं, जिसको आप मनोबल कहते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट बनता है तो मन की ताकत से, कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनता है तो वो भी मन की ताकत से। तो इस मन को अपन कहाँ लगाएं, जो अपने को लगे कि ये बहुत काम की चीज़ है, ये हमें परेशान नहीं कर रहा, तो इसको मनन में लगा दो। मनन में तीन शब्द है, मन प्लस नय। जब आप मनन करेंगे तो मन ऐसे हो जाएगा जैसे है ही नहीं, है ही नहीं माना उसकी चंचलता, उसकी भाग दौड़, वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे आपने मक्खी को देखा होगा, जब तक उसको मनपसंद फूल ना मिले वो बगीचे में भी 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 करती, ऐसे घूमती रहती है। लेकिन जैसे ही मनपसंद फूल मिलेगा वो उसके ऊपर बैठ जाएगी, मकरंद चूसना शुरू कर देगी। फिर आप मक्खी को हिलाओ, उड़ाओ, भगाओ, उसको ऐसे हाथ से भी झटको, लेकिन वो उसको छोड़ेगी नहीं। आनंद आ गया ना? तो ऐसे ही जब तक मन को आनंद नहीं मिलता, ये घूमता है, भटकता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यूजलेसली। लेकिन जब इसको विचारिक आनंद आने लगता है, मनन क्या है, विचार ही तो है ना, और जब अपने ही उठते हुए विचारों का आनंद आने लगता है तो ये उन विचारों के आनंद में खो जाता है, अंदर ही अंदर खुश रहता है। ये एक ऐसी खुशी है जो किसी बाह्य साधन पर आधारित नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा, एक सुंदर स्लोगन है कि जिन लोगों के पास अच्छे विचार हैं वे कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। दुनिया में अकेलेपन की भी बहुत बड़ी समस्या है ना। बुजुर्ग आदमी कहेगा मैं अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लगता। कई कन्याएं कहती हैं दीदी बाहर से चली गई, अब मेरा पीछे सेंटर पे अकेली का मन नहीं लगता। कई बच्चे कहते हैं पेरेंट्स बाहर गए, कई कहते हैं मेरा फ्रेंड चला गया, मेरा मन नहीं लगता। इसलिए कि मन खाली है। अगर मन में विचारों का आनंद आए तो कहेंगे भले सब जाएं, अच्छा है मैं अकेला रहूं, ताकि मैं विचारों का आनंद लूं। तो जैसे हमारी अन्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे हम हंसते हैं, तो अपन किसी को ये नहीं कह सकते भाई मुझे हंसना सिखाओ, क्योंकि हंसना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपने आप स्प्राउट होती है, और हर एक बात को देख करके हर एक को हंसी आए ऐसा भी नहीं होता है। कोई आदमी तो उसको सुन करके लोटपोट हो जाएगा, कोई सोचता रहेगा ये पता नहीं क्यों हंस रही है, मुझे तो इसमें हंसी का कुछ भी नहीं लगता। इसी तरह रोना, ये भी एक मानवीय प्रवृत्ति है, ये भी सीखा नहीं जा सकता भाई मुझे रोना सिखाओ, नहीं। कोई घटना, कोई बात देख करके ऑटोमेटिक स्प्राउट होती है ये भावना, और इसमें भी सब एक समान नहीं है। अब जैसे कई लोग रामायण की कथा सुनते हैं, सीता को वनवास मिला, सुन के बहुत रोते हैं। कई लोग कहते हैं क्या झूठी कहानी है, क्यों रोना, ना सीता हुई ना रामायण हुई, काहे को रोई। तो कोई अपने लॉजिक को यूज करता है, कोई मन के भाव में बह जाता है। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को देख करके स्वाभाविक जो मन के विचार पैदा होते हैं उसका नाम है मन। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मनन चलता क्यों नहीं है, मनन आता क्यों नहीं है, मन में विचार आते क्यों नहीं है। नहीं, स्वाभाविक रूप से कोई चीज़, कोई बात, कोई घटना, कोई दृश्य हमको टच कर जाता है। इतना टच करता है कि वो गहराई में चला जाता है। आप फिर आगे का रास्ता तय करेंगे लेकिन आपको आगे का कुछ नहीं दिखेगा, उसी बात पर, उसी चीज़ पर आपका मन अटक जाएगा, क्योंकि वो बात आपको लग गई, वो दृश्य आपको लग गया, और उसमें कोई ऐसी काम की चीज़ आपको मिल गई कि आप उसमें खो गए। तो देखने वाला क्या कहेगा, ये पता नहीं कहाँ है, यहाँ है ही नहीं है। कोई कोई ऐसे लोगों को पागल भी कह देते हैं, क्यों? क्योंकि वो है कहीं और मन कहीं और है। अब बातें कैसे लगती हैं, अब जैसे देखो मुझे कैसे बात लगी, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैं एक स्टेशन पे खड़ी हूँ ट्रेन की इंतज़ार में, नॉर्मल बाबा की याद में खड़े हुए हैं ना, सामान हाथ में है, बस ट्रेन आने वाली है 15-20 मिनट में है, सब लोग खड़े हैं, मैं भी उनके बीच में खड़ी हूँ। अब इतनी देर में मैं एक महिला को देखती हूँ, उसके साथ उसका लगभग 2.5 साल का बच्चा है। बहुत महिलाएं होती हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, कोई नई बात नहीं है ना। अब वो बच्चा प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए एक बॉक्स को उठाता है, बच्चे होते हैं बॉक्स उठा ही लेते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है, और वो खेलना शुरू करता है। इतनी देर में उसकी माँ, जो अन्य महिलाओं से बात कर रही थी, बच्चे को देखती हैं, गुस्सा करती है कि इसको तूने उठाया क्यों, है तो गंदा है, फेंक इसको। बच्चे को आंख दिखाती है, जोर से डांटती है, और वो बॉक्स उसके हाथ से छीन के फेंक देती है। मैं देख रही हूँ। अब माँ ने अपना मुंह फिराया और फिर महिलाओं से बात करने लगी, और उस बच्चे ने देखा मेरी माँ मुझे देख नहीं रही है, उसने दोबारा बॉक्स उठा ली। अब इस बात को देख करके मेरा चिंतन चला। क्या चिंतन चला? अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं देते, केवल डांट लगाते हो, झड़क देते हो, चीज खोंस के फेंक देते हो, तो बच्चे का सुधार नहीं हो सकता। बच्चे को प्यार चाहिए, अगर माँ प्यार देगी, ध्यान देगी, तो वो बॉक्स को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन माँ के पास टाइम नहीं है, तो बच्चे को भी तो कुछ चाहिए, माँ को तो दूसरी महिलाएं मिल गई, तो बच्चे को भी तो कुछ चाहिए, इसलिए वो बॉक्स को उठाएगा। अब ये मेरा मनन चल रहा है। अच्छा, उसके आगे फिर मैंने क्या देखा कि उस बच्चे ने 3 बार ऐसे ही किया, माँ ने फिर डांट लगाई, फिर बॉक्स फेंका, बच्चे ने चुपके से फिर उठा लिया, और 3री बार तो माँ ने जोर से कान पकड़ा और कान को पकड़ के यूं मरोड़ा, तो बच्चा रोया, आँख के में यहाँ आंसू आए और बॉक्स फेंका। माँ ने 3 बार कहा फिर भी बच्चा नहीं बदला। फिर मैंने अगला दृश्य क्या देखा कि उस बच्चे के परिवार का कोई बड़ा आदमी, मामा या जो भी रहा होगा, उसने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और वो जो बॉक्स पड़ा था उसकी तरफ इशारा करके कहा, बेटा ये गंदा है, बेटा गंदी चीज़ को अपन हाथ नहीं लगाते, ये छीछी है। तो बच्चे ने उस व्यक्ति के साथ साथ बोला, ये छीछी है। फिर उस व्यक्ति ने एक्टिंग की, जैसे मिट्टी लग जाती है तो अपन हाथ झाड़ती है ना, तो बच्चे तो नकलची होते हैं, बच्चे ने भी ऐसे किया। तो उसने कहा, बेटा छीछी है, इसको हाथ नहीं लगाना, और ऐसे कह के उसने उसको गोदी से उतार दिया। माँ अब भी बातों में लगी हुई थी, लेकिन बच्चे ने अब बॉक्स को हाथ नहीं लगाया। अब मेरा और चिंतन चला कि देखो माँ ने 3 बार कहा, बच्चे ने नहीं माना, और इस व्यक्ति ने 1 बार कहा ये छी छी है, और बच्चे ने मान ली। माँ के पास कौन सी शक्ति है? क्रोध की, हिंसा की, झिड़क की, डांट की शक्ति है। और इस आदमी के पास कौन सी शक्ति है? प्यार की, समझ की। तो कौन सी चीज़ बड़ी है? प्यार है। देखो प्यार की भाषा कितनी ताकतवर है, अंदर चली गई, बच्चे के भीतर तक उतर गई, और डांट की भाषा अंदर गई ही नहीं। अब मान लो मैं ट्रेन में भी बैठ जाती हूँ तो मैं इस दृश्य को भूलूंगी तो नहीं ना, क्योंकि इस दृश्य ने मुझे एक पाठ पढ़ाया, मैंने प्रैक्टिकल देखा। लोग कहते हैं आप कैसे कह सकते हो प्यार बड़ी चीज़ है, एक 2.5 साल का बच्चा भी प्यार और मार की भाषा समझता है, तो बड़े लोग क्यों नहीं समझेंगे? जीत तो प्यार की ही होगी। अब ये मेरी अनुभूति है, मैंने किसी का लिखा हुआ नकल नहीं किया, किसी की कही हुई बात नहीं चुराई, लेकिन मैंने आँखों से देखी। तो जो चीज़ अपन अपनी आँखों से देखते हैं वो अपने अंदर गहराई तक घुसती है। तो अब ये मेरी निजी अनुभूति है कि प्यार आदमी को बदल सकता है, मार नहीं, हिंसा नहीं। अब मैं जब क्लास कराती हूँ माताओं को तो मैं ये वाली बात सुनाती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ देखो जो काम मुंह से करना चाहिए वो हम हाथ से करते हैं, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं जल्दी हो जाएगा, मुंह से समझाने में देर लगेगी, हाथ वाला काम 1 सेकंड का है। जल्दी, आजकल सबको जल्दबाजी चाहिए ना, सब चीज़ों में जल्दबाजी चाहिए, इसलिए आजकल लोग कहते हैं जन्मते ही सीधे बूढ़े हो जाओ, जवान होने में टाइम लगेगा, शॉर्टकट। तो आजकल इसमें भी शॉर्टकट है, अब जो बाल 80 साल में सफ़ेद होते थे वो 20-22 में हो जाते हैं, कहते हैं कौन इंतज़ार करे बुढ़ापे की। अब जो रीढ़ की हड्डी 60 साल में दुखती थी वो भी 25-30 में दुखनी शुरू हो जाती है, शॉर्टकट है ना, कौन इंतज़ार करे 80 साल तक की है? तो अपन शॉर्टकट ढूंढते हैं हर बात में, तो ये उसी का परिणाम है। मनन एक ऐसी चीज है, ऐसी अनुभूति है कि उसमें एक बात के साथ दूसरी बात, दूसरी के साथ तीसरी मन में आएंगी, और जो आदमी उसको सुनेगा उसको भी वो तीर की तरह लगेगी, भूलेगा नहीं वो। एक होता है ऑर्डिनरी चिंतन जो सबका है, लेकिन मनन माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिंतन, जो बात किसी ने नहीं सोची तभी तो लोग उसको सुनेंगे, नहीं तो क्यों सुनेंगे। अब हर एक आदमी को पता है मीठा बोलना चाहिए, मीठा बोलना अच्छा होता है, मीठे बोल से सुख मिलता है। अब यूं मीठे बोल पे आप चाहे 50 लाइनें लिख लो, लेकिन वो कोई मनन नहीं है, ऑर्डिनरी लाइनें। लेकिन आप एक नए ढंग से लिखिए, कुछ गहराई से लिखिए, मिठास के बारे में कुछ नया चिंतन दीजिए, तो लोगों को वो बात लगेगी, आपको भी लगेगी, पहले करने वाले को लगेगी। थोड़े दिन पहले हमको एक आदमी ने, एक भाई ने मैगजीन में एक लेख भेजा, लेख बहुत ही छोटा था, 1 पेज का भी नहीं था। अभी एक यहाँ शांतिवन में ग्रुप आया 3 दिन पहले, उसने मुझे कहा मैं आपकी मैगजीन बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कई लेख तो ऐसे होते हैं मैं भूलती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई कौन सा लेख ऐसा है जो कुत्ते को अच्छा लगा। उसने कहा जी एक छोटा सा लेख था, तो उसने जब बताया तो मैंने पहले जिसकी बात की ना वो वही लेख था। अब उस लेख में देखो एक लिखने वाले ने क्या लिखा था। उसने लिखा था, आपको भी याद आएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, एक बिल्कुल नया चिंतन। उसने लिखा कि नए मेहमान को क्या देंगे आप, याद हो किसी को? हाँ, किस किस को याद है? हाँ, कुछ को याद है। उसमें उसने लिखा कि भाई आप किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हो तो आपको ये भी चिंता होती है कि उसको बिस्तर अच्छा मिले, दूध मिले, रोटी मिले, हवा पानी अच्छा मिले। मान लो आपके शहर में कर्फ्यू लगा पड़ा है, गलियां गंदी पड़ी हैं, बसों का आना जाना नहीं है, प्रदूषण बहुत है, धुआं फैला पड़ा है, चीज़ें बहुत महंगी हैं, सब्जी मिलती नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे? भाई हमारे शहर में अभी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, अभी मत आना, जब थोड़ा ठीक हो जाए तब आना। तो उसने कहा कि देखो आजकल लोग नए नए बच्चों को बुला रहे हैं, तो बच्चे को अपने घर में बुलाते हैं जो माता पिता, वो उस बच्चे को क्या देंगे? ऐसी ऑक्सीजन जिसमें धूल है, धुआं है, गंदगी है, ऐसा पानी जिसमें गटर का पानी मिला हुआ है, ऐसी सब्जी खिलाएंगे जिसमें केमिकल मिले हुए हैं, और ऐसे घर में रखेंगे जहाँ आदमी को आदमी से लेना देना, बातचीत, बोलचाल, व्यवहार ही नहीं, तो भला उस मेहमान को दुखी करने के लिए क्यों बुला रही हो? वो जहाँ है सुखी रहे। अब ये आर्टिकल लोगों ने पढ़ा, अब सीधा सीधा किसी को कहो कि बच्चे पैदा मत करो, कहेगा क्यों? देखो ब्रह्मा कुमारियाँ बच्चे पैदा करने से मना करती हैं, इनका खाने आते हैं क्या? हम पैदा करेंगे, हम खिलाएंगे, इनको क्या पड़ी? आपकी बात सुनेंगे लोग? नहीं सुनेंगे। पर आप इस ढंग से उसको कहो कि भाई देखो बुला बेशक लो मेहमान को, लेकिन आप उसे क्या दोगे? नौकर रखोगे, वो भी बीड़ी गुटखा खाता होगा, उसको खिलाएगा और ऐसे नशे की चीज़ मुंह में डाल देगा ताकि घंटों सोया रहे, ना रोए ना मुझे इसको उठाना पड़े। अच्छा टीवी चलाओगे, उसमें भी हजारों खराब बातें आएंगी, गली मोहल्ले में छोड़ दोगे, आजकल ये भी नहीं पता कौन पड़ोसी किडनैप कर लेते हैं। पहले ये समस्या गाँव में नहीं थी, आजकल तो गाँव में भी बच्चे उठने लगे, तो आप क्या करोगे उस बच्चे को? क्या दोगे? आपके पास क्या है देने के लिए? आपके पास भी टाइम नहीं है, आप सुबह भागोगे, आपकी बीबी भागेगी, बच्चे को क्रच में छोड़ोगे या क्या पता कहाँ लावारिसों की तरह से बंद करके जाओगे, क्या करोगे? तो क्या फ़ायदा जब आपके पास नहीं है टाइम, तो इसलिए खुद ही भगवान के बच्चे बन जाओ। तो जब आप बात को इस तरीके से कहोगे तो उसको लगेगी। तो मनन का मतलब है बात इस ढंग से कहना कि अगले आदमी को बुरा भी ना लगे और उसके चित्त में अंदर तक जाए, बात तो इसने ठीक कही है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन बात इसकी बिल्कुल ठीक। अब सीधा सीधा मत कहो। एक बार मैं एक गांव में गई, तो जी गांव तो बहुत बड़ा था और भाई बहन भी बहुत थे, और उस बहन ने मेहनत बहुत की थी, लगभग 500 माताएं दरी पे आके बैठ गई। तो उसने मेरे कान में आके कहा, मैंने उसको कहा तुम्हारी तो क्लास बड़ी अच्छी है, गांव बड़ा, 500 माताएं आके बैठ गई। बोली बहन जी देखो भाई एक भी नहीं आया, हमारे कहने से भाई आते ही नहीं, आप बुला दो ना भाइयों को। तो वो भाइयों ने क्या किया, अपने अपने घरों के आगे जो बरामदा था ना उसमें खड़े थे, बैठे भी नहीं थे, और माताएं दरी पे आके बैठ गई हमारे सामने। भाइयों को आती होगी शर्म, क्या पता गांव में थोड़ा ऐसा होता भी। वो मुझे कहे बहन जी इस गांव में एक भी आदमी नहीं आता है क्लास में भी नहीं आता, आज आप आए हो, आप भी नहीं आए, भाइयों को बुलाओ ना बहन जी, इन भाइयों को कहो ना आए। अब मैं सीधा सीधा कहूँ अरे भाइयों आओ बैठ जाओ, उन्हें खुद नहीं दिखता क्या, वो खुद ना आके बैठ जाएं? तो वो बहन फिर कहे बहन जी इनको बुलाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बुलाती हूँ। तो मैंने उनको कहा देखो भाई आप सबने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी है? तो वो दूर खड़े खड़े थोड़ा थोड़ा सिर हिला रहे थे। मैंने कहा रामायण में ना दो पात्र हैं, एक है भीलनी और एक है सुरपंखा। तो भाई भीलनी जो थी वो बेचारी राम का नाम लेती थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, सुंदर भी नहीं थी, बूढ़ी भी हो गई थी। और सुरपंखा थी, बड़ी रूपवान, घड़ी घड़ी रूप बदलती थी, नौजवान भी थी, सुंदर भी थी, राक्षस की बहन थी, पैसे वाली भी थी, भीलनी तो गरीब थी। तो भाई आप सारे लोग इतनी दूर दूर खड़े हो, अब मैं तो देखो भीलनी हूँ क्योंकि मैं राम का नाम लेती हूँ, मेरे को तो राम ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता है। आप एक भीलनी से डरते हो और अगर यहाँ कोई सुरपंखा आ जाए तो तुम क्या करोगे? सारे भागे आओगे। अरे भाई मैं सुरपंखा के नज़दीक बैठूं, थोड़ा हाथ तो लगा के देखूं, थोड़ी फोटो तो खींच जाए, और अगर किसी की खींच गई तो अगले दिन अखबार को सबको दिखाएगा मैं सुरपंखा के साथ खड़ा हुआ हूँ, देखो मैं सुरपंखा के साथ खड़ा हुआ हूँ, और उस फोटो को ऐसे संभाल के रखेगा जैसे पता नहीं क्या ऊपर से कोई कीमती चीज़ आ गई हो। भाई मैंने ऐसे कहा और वो सारे दौड़ दौड़ के आके ना दरी पर बैठ गए। मैंने कहा तुमको मेरे से डर लगता है ना, मेरे नाखून, सुरपंखा के तो बड़े बड़े नाखून थे, हैं भाई उसको सुपनखा क्यों बोलते, नाखून थे सूप प्लस नखा। सूप माना क्या, वो छज होता है, उससे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसकी जो आकृति होती है वो सूप जैसी होती है, और नखा माना नाखून। और आजकल भी लोग क्या बनना चाहते हैं, एक बार एक कन्या आई, मैंने कहा क्या हो गया, बोली मेरा नाखून टूट गया क्योंकि बड़े लंबे समय से खिला पिला के पाल पोस के बड़ा किया था, वो अचानक टूट गया। मैंने कहा इसकी तो स्वर्ग की बाजिया ही गई बेचारी की। तो एक ऐसा विचार जो अगले आदमी को अच्छाई के लिए मोटिवेट करे, चुभे नहीं उसको, लेकिन उसको अपनी कमी का, अपनी असलियत का पता पड़ जाए। लेकिन ये विचार अंदर में तब आएगा जब मन कहीं उलझा हुआ नहीं होगा। उलझे हुए मन में तो उलझन के ही विचार चलेंगे भाई, और मन को कोई आकर्षण नहीं होगा, मन को कोई स्वार्थ नहीं होगा, और उसको कोई दिखावे की भावना नहीं होगी, कल्याण भावना होगी, रहम भावना होगी, देने की भावना होगी, और मन बिल्कुल फ्री होगा, पिंजरे से छुटे हुए पंछी की तरह से, तब वो नए आइडियाज क्रिएट करेगा। उसी का नाम मनन है, क्रिएटिविटी का नाम ही मनन है। और सेवा के क्षेत्र में हमें क्रिएटिविटी बहुत चाहिए, ये केवल भाषण और लिखने में ही नहीं चाहिए मनन, अपन जो प्रोग्राम करते हैं, अपन कोई भी करते हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ अपना नाता है, तो जिस तरीके से वो पब्लिक बाबा के नज़दीक आ सके, आप इस तरह की कोई क्रिएटिविटी करो, कोई नई बात मनन करो, वो मनन है, क्योंकि वो मनन फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा, लिखने में या बोलने में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो भी मनन है। या आप घर की व्यवस्था का मनन करते हो, भोजन में किस तरह से लोगों को क्या दिया जाए वो मनन करते हो, ये भी मनन है, लेकिन ये व्यवस्था के बारे में मनन है, एक ज्ञान का मनन है। या आप संबंधों के सुधार का मनन करते हो, मैं इससे ऐसी बात कहूँ जो ये पुरानी बात बिल्कुल ही भूल जाए, मेरे इससे संबंध बिल्कुल ही सुधर जाए, मनन करो आप। क्या तरीका निकालूं जो ये मेरे नज़दीक आ जाए और पुरानी बात भूल जाए? ये भी अपन मनन करती हैं, ये मनन भी कल्याणकारी है। हमने अपना भुलाया, दूसरे के मन से भी बात को निकाल दें। जिन लोगों ने भी कोई नई चीज़ बनाई, उन्होंने मनन किया, जैसे आविष्कारक है, साइंस के क्षेत्र में आविष्कार करते हैं तो मनन करती हैं ना, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर चिंतन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इसके लिए अंतर्मुखता बहुत चाहिए, भीतर ही भीतर आत्मा को व्यस्त रखने का शौक चाहिए। कोई छोटी सी भी चीज़, छोटी सी भी बात आपके थॉट्स को स्प्राउट कर सकती है। बात छोटी नहीं होती, अपन उसको मनन करके उसमें से कई कल्याणकारी बातें निकाल सकते हैं। अब जैसे छुई मुई का पौधा आप सबने देखा, अब आप मनन करो कि इसका नाम छुई मुई क्यों रखा? छुई और मुई छूते ही मर गई, इसलिए इसका नाम छुई मुई रखा। अच्छा, बाबा हमें से हमको कहता है बच्चे छुई मुई नहीं बनना, हैं? बच्चों को कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना है, बच्चों को छुई मुई नहीं बनना। अब छुई मुई की खासियत क्या है कि आप उसको प्यार दोगे ना तो भी मुरझाएगी, मारने की तो बात छोड़ो। तो छुई मुई कौन सी आत्मा है जिसको आप अच्छी बात कहोगे ना वो भी उसको? अभी आजकल घरों में बच्चे आपने देखे होंगे, आप भी बच्चे रहे हो, माँ कहती है बेटा दूध पी ले, ठंडा हो रहा है, वो अपना करता रहेगा कुछ, बच्चा हो बच्ची हो। थोड़ी देर में माँ फिर कहेगी अरे बेटा दूध पी ले ना, पी लूँगा, चुप रहना। अब इसको कहते हैं छुई और मुई। अब माँ तो प्यार से ही कह रही है, कल्याण की ही बात कह रही है, दूध का गिलास गिर जाएगा, पहले इसको एक सेकंड में पी ले फिर अपने काम करते रहना। लेकिन हम उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, उस कल्याण भाव को समझ ही नहीं पाते। दोबारा मुझे कहा ही क्यों? देखा है ना सदृश, आप बार बार कहते ही क्यों, आपको क्या पड़ी है मैं करूं ना करूं, यहां से चले जाओ, बच्चे कह देते हैं ना। तो बच्चों की सुनने की शक्ति ऐसी है जैसे छुई मुई में स्पर्श को सहन करने की शक्ति, उस स्पर्श को नहीं सहन कर पाती और बच्चे सुन नहीं पाते। इसलिए बाबा कहता है छुई मुई मत बनो, कोई दो बार भी बात कह दे सुन लो, धैर्य रखो, सुनने की शक्ति रखो। अच्छा, आपने मक्खी को देखा होगा, रोज देखते हो आप भोग बनाते हो सेंटर पे, बूंदी के दो दाने गिरे, चीनी की चास जरा गिरी, मक्खियाँ आ जाएंगी। अब आपने मक्खी को चास में बैठे भी देखा होगा, लिपटे भी देखा होगा, है ना? अब आप उसकी हालत का चिंतन करो, बेचारी मक्खी, उसको मीठी चीज अच्छी लगती है। ये इस मक्खी को आप अपना गुरु बना सकते हो, क्योंकि वो आपको एक पाठ पढ़ा रही है, उसको मीठी चीज़ अच्छी लगती है ना, मीठा तो हमको भी अच्छा लगता है, बताओ किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है ना, भोग सबको अच्छा लगता है, वो भी भोग खाने आई है, भले खाए उसका भी हक है। लेकिन हाय बेचारी मक्खी, मुंह बाद में डुबोती है, पंख पहले डुबोती है ना। तो जो लोग इस संसार में कर्म करने आए, वो कर्म करें, कर्तव्य करें और न्यारे हो जाएं, लेकिन उन्होंने कर्म किया ही नहीं और संसार में डूब बैठे मक्खी की तरह। काम तो करते ही नहीं है लेकिन मन को संसार में इतना डुबो लिया जैसे मक्खी ने पंख इतने डुबो लिया बुड़ नहीं सकती। वही चीनी उसके पांव की सांकल बन गई। यही संसार उन लोगों के लिए दलदल बन गया जिन्होंने मन को इसमें डुबो लिया, किया कराया कुछ नहीं। तो मक्खी हमारी गुरु है, हमको क्या कहती है कि देखो जितनी जरूरत है उतना ही अंग लगाना संसार में। आपको चास मिठास खाना था, सिर्फ मुंह लगाओ खा के उड़ जाओ तो सुखी रहोगे। अगर आपने पंख डुबो लिए, पांव जमा लिए, आप भी मेरी तरह तड़फोगे, मिलेगा कुछ नहीं, तड़फ तड़फ के आपको भी दम तोड़ना पड़ेगा। दुनिया के लोगों की हालत कैसी है? मक्खी से बढ़िया है क्या? घरों में लोग फंसे पड़े हैं, काम धंधे में लोग फंसे पड़े हैं। दुकान वाले को कहो कि भाई तू 18 घंटे काम क्यों करता है? कहेगा बहन जी इस पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन पेट में तो तूने डाला नहीं, टिफिन तो वापस आ गया भरा भराया। तो मक्खी वाली हालत हुई ना, 18 घंटे कमाया उस आदमी ने दुकान पे, झूठ बोला, मिलावट की, पाप किया, गुस्सा किया, नौकरों को थोड़ी तनख्वाह दी, बहुत कुछ किया, लेकिन जिस पेट के लिए ये सारे काम किए उसमें तो गर्म चाय के प्याले तो बेचारा उलेंडता रहा 4 बार 5 बार, लेकिन खाना खाया नहीं। दोपहर वाला टिफिन भी वापस आ गया, रात वाला भी वापस आ गया। तो ये मक्खी वाली हालत है ना। घर में महिलाएं कहती बहन जी घर में काम तो करना ही पड़ेगा, सारा दिन घर का कहती रहेंगी। उनके रसोई में जाओ ना तो चने के डब्बे में तो आपको घुण घूमते मिलेंगे, रसोई की स्लैब पे आपको दाग मिलेंगे। वैसे वो कहेंगी फुर्सत नहीं है बहन जी, घर तो संभालना ही पड़ता है ना, लेकिन संभालने वाली चीज में एक भी संभाल नहीं मिलेगी। घर में फंसी पड़ी है लेकिन संभाल नहीं है घर की चीजों की। तो ये आपने किससे पाठ सीखा? मक्खी से सीखा है। कहते हैं दत्तात्रेय ने 13 गुरु बनाए थे, तो उसमें मक्खी भी थी, सांप भी था, भरमरी भी थी, कछुआ भी था, बहुत उसके गुरु दिखाते हैं। तो आप समझ गए मनन किस चीज का नाम है। आप सफेद साड़ी पहने हुए हो, देखो सफेद साड़ी के ऊपर अगर आम का छोटा सा टुकड़ा गिर जाए तो ये तुरंत पीली हो जाती है, दूर से दिखेगा ना पीला रंग, तो आपको बेचैनी होती है कि मैं ये पीला दाग लगी हुई साड़ी पहन के क्लास में नहीं जाऊंगी। और आप भले क्लास में 5 मिनट देरी से पहुंचो लेकिन पहले उसको धुलाई करोगे, करते हो ना ऐसा। आपको साड़ी साफ रखने का कितना शौक है, साड़ी पे दाग नहीं लगना चाहिए। अब आप विचार करो कि क्या हमें अपने मन को बेदाग बनाने का इतना शौक है? साड़ी का दाग कोई ज्यादा तकलीफ देने वाला नहीं है, आप दूसरी तरफ से पहन सकते हो। और चलो इसको आप फेंक भी दो तो 250-300 रुपए की तो चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, बाजार में दूसरी साड़ी आएगी। लेकिन आप इस मन को फेंक दो दाग वाले को, नया मन कहाँ से खरीद के लाओगे? है कोई दुकान? तो जैसे आपको बेचैनी है, मैं किसी के सामने, दादी के सामने नहीं जाऊंगी दाग वाली साड़ी पहन के, बड़ी बहनों के सामने नहीं जाऊंगी, क्या इतनी बेचैनी है कि मैं इस दाग वाले मन को लेके कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी? पहले मुझे मन के दाग को मिटाना है। दाग माना कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, किसी को दिखता थोड़े है मैं क्या सोच रही हूँ, पीछे बैठ जाऊंगी, इसका मतलब दाग दाग मन का दाग किसी को दिखता नहीं है, तो उसको चला लो और साड़ी को उजला बनाओ। कबीरदास का एक दोहा है ना, कि तन को धोया मन को क्यों नहीं धोया, जिस पर दाग हजार, ऐसे करके एक दोहा है उसका। आप जब स्थूल चीज के साथ सूक्ष्म चीज का कंपैरिजन करेंगे तो एक तो आपको अपने परिवर्तन की प्रेरणा आएगी, और दूसरा कितनी ही चीजें हैं जो रोज अपने को प्रेरणा दे सकती हैं। ओम शांति। तो जैसे आप रास्ते चलते जा रहे हो, भले सफर में हो, कहीं भी हो, किसी छोटी सी बात में से भी आप बड़ा ऊंचा मीनिंग निकाल सकते हो, है ना। और इसमें एक ये भी है, जब आप उस मीनिंग के अनुकूल अपने को ढालते हो, माना अपने में परिवर्तन करते हो, तो बाबा आपको फिर और नई टचिंग देता है। लेकिन आपको बड़ी अच्छा मीनिंग निकला और लापरवाही में आपने उसको भुला दिया, तो आगे से फिर और आइडियाज आएंगे नहीं, क्योंकि आपको आया, आपने उसको यूज ही नहीं किया। अब मनन का और लेखन का यूं तो गहरा संबंध है, लेकिन मनन की प्रक्रियाएं लेखन में तब आए जब आप उनको उसी समय लिखेंगे। लिखने में बहुत लोग आलसी होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आलस्य बढ़ता जाता है। लिखना बोलना सरल लगता है, लिखना मुश्किल लगता है। लेकिन जिसको ये ख्याल है कि मैं न्यू आइडियाज क्रिएट करूं और न्यू आइडियाज कलेक्ट करूं, तो आप दूसरों के आइडियाज से भी फायदा उठाइए, लेकिन आप अपने आइडियाज भी क्रिएट कीजिए और उनको लिखिए, लेकिन उसी समय लिखिए। और अगर आपको लेख लिखना है तो आप एक प्रकार के आइडियाज को कलेक्ट कीजिए, एक विषय से कनेक्टेड आइडिया पर न्यू आइडियाज। अगर लेख को इम्प्रेसिव बनाना है तो अगर आप ऑर्डिनरी लिखेंगे तो वो ऑर्डिनरी श्रेणी में आएगा। आपको इम्प्रेसिव बनाना है तो ये ख्याल रखिए कि मैं ऐसा आइडिया विचार इसमें दूं जो ना आज तक मैंने कहीं पढ़ा हो ना किसी और ने पढ़ा हो। नवीनता हरेक को अच्छी लगती है ना। तो टॉपिक भी अगर नए ढंग से लिखा हुआ हो तो वो पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को आकर्षित करता है, उसी बात को नए ढंग से कहा गया हो तो। अब जैसे हमारा ये हाथ है, सबके पास अपना अपना हाथ है ना, आंखें भी हैं, कान, मुख, शरीर के सब अंग है ना सबके पास। यहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र है क्या? आपने लक्ष्मी को देखा है ना? अब लक्ष्मी की आंखें ज्यादा सुंदर हैं या आपकी? लक्ष्मी की ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसका चित्र अपन देखते ही रहते हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं, सिर्फ आंखें ही नहीं, उसके होंठ भी सुंदर हैं। हमारे में तो किसी के मोटे होंगे, किसी के बहुत पतले होंगे, किसी के बहुत लंबे साइज, लक्ष्मी जैसे तो किसी के भी नहीं, लंबा मना यहाँ तक भी होता है, क्योंकि वैरायटी वैरायटी डिजाइन है। सतयुग में इतने डिजाइन नहीं होते। अच्छा, आँखें भी ऐसी हैं, किसी की मोटी हैं, किसी की बिल्कुल छोटी हैं, ऐसे लगता है दीवार में थोड़ी चीर है, किसी का चेहरा बहुत लंबा है, किसी का बहुत ऐसे, सबका ऐसे ही है ना, हर एक का अपना अपना है। लेकिन आपको काम क्या आएगा, लक्ष्मी वाली आंखें काम आएंगी क्या? काम कौन सी आएंगी? काम तो आपको अपनी आएंगी, चाहे उसकी कितनी भी सुंदर हो, आप देखोगे तो अपनी आंख से ही ना, कि उसकी आंख से देख सकते नहीं देख सकते ना। अच्छा, आपका हाथ कैसा भी है, आप काम तो अपने हाथ से ही करोगे लक्ष्मी वाला हाथ आपको काम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आपको अपना टूटा फूटा दर्द वाला जैसा भी हो, अपना शरीर अपना हाथ पांव अच्छा लगता है। ऐसे ही जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं वो भी मेरे हाथ पांव जैसे ही हैं, जो मुझसे दूर हैं वो भले कितने भी अच्छे हों लेकिन मुझे काम थोड़े आएंगे। समझ गए मेरी बात? लौकिक दुनिया में एक बच्चा कहता है मेरे को मेरी माँ पसंद नहीं है, पड़ोसी की माँ बड़ी अच्छी है, कितनी भी अच्छी पढ़ी लिखी हो उसको तो काम उसकी माँ ही आएगी ना, खाना तो वही बना के खिलाएगी, सुबह उठाएगी भी वही, स्कूल भी वही भेजेगी। तो जो बहन मेरे साथ रह रही है मुझे वही काम आएगी, दूसरी वाली कितनी भी पढ़ी लिखी कितनी भी अच्छी हो, दूसरे सेंटर वाली मेरे काम आएगी क्या? इसलिए अपनों से प्यार करना सीखो, जो अपने करीब हैं उनको रिगार्ड देना सीखो। जैसे हमें अपना हाथ प्रिय है, सुंदर नहीं चाहिए हमें तो अपना हाथ चाहिए जो अपना हो, तो ये एक मनन का विषय है। आपको नज़दीक वालों से नफरत क्यों है? अगर नफरत आती है तो मनन करो, सबसे नज़दीक तो मेरा हाथ है, मुझे इससे नफरत क्यों नहीं आती? प्यारा लगता है ना, क्योंकि मेरा है। इसी तरह से जो भी लोग हैं मेरे अराउंड वो सब कौन है? मेरे हैं, मेरा परिवार है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, किसी और से प्रभावित नहीं होना। सेंटर पे जाएंगे बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत बहुत वैरायटी वैरायटी लोग आएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे, मेरा परिवार तो वही है ना, मेरे लिए वही सबसे सुंदर। आपके मन की जो उलझने हैं आप मनन करके उनको सुलझा सकते हो, आप अपने प्रभावों को मनन करके खत्म कर सकते हो। किसी के लिए आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, आप ईर्ष्या से बोझिल मत हो जाओ, उसी समय मनन शुरू करो। एक कन्या ने बहुत बढ़िया भाषण किया, उसकी महिमा हो गई, मुझे ईर्ष्या हो गई, देखो इसी की महिमा हो रही है, इसी की महिमा हो रही है। आप मनन करो कि इसने इतना बढ़िया भाषण किया तो जरूर इसने बहुत पढ़ा होगा, प्यार से याद किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, और फिर बोलने का भी लक्ष्य रखा होगा देहाभिमान तोड़ करके, तब इसकी महिमा हुई। अब मैंने मेहनत नहीं की, सीधा साधा लिखा, सीधा साधा बोल दिया, तो अगर मुझे मैं इससे ईर्ष्या करती रही तो फायदा क्या? मैं भी मेहनत करूं, इससे पूछूं भी तूने कैसे किया, सीखूं, है ना। मनन करो, कोई भी कमजोरी आप मनन करके दूर कर सकते हो। आलस्य है, आप मनन करोगे तो आलस्य दूर होगा, सोचते रहोगे नहीं। अब आलस्य को दूर करने के लिए क्या मनन करोगे? देखो, आलस्य वाला सोया रहेगा, बैठा रहेगा, है ना। अब सोया रहना बैठे रहना किसकी निशानी है? बीमार आदमी की। जो बीमार हो, अपंग हो, लूला लंगड़ा हो, हैं? तो आप अपने से पूछो, मैं लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, बीमार हूँ, बूढ़ी हूँ 90 साल की, फिर भला मुझे आलस्य की क्या आवश्यकता है? मैं क्यों आलस्य में बैठी? जब मेरी टांगें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पांव ठीक हैं, फिर मैं क्यों बैठी हूँ? अपने से सवाल पूछूं, बैठने का कारण क्या है? अब जैसे कोई आदमी काम नहीं करता है, हाथ नहीं हिलाता, और जिसके हाथ नहीं होते वो भी हाथ नहीं हिलाता, तो दोनों एक जैसी हो गई ना भाई। उसको हाथ मिलने का फायदा क्या हुआ जब वो हिलाता ही नहीं है? तो उसको भी उसी लाइन में लगा दो क्योंकि वो हिलाता तो है नहीं, है ना? हाथ वाले का काम है वो हाथों को हिलाएगा, उनसे काम करेगा, नहीं करता है तो। अब किसी के पास धन है और वो उसको यूज नहीं करता, बेचारा फटे कपड़े पहनता है, तो उसको भी उसी लाइन में रख दो, गरीबी रेखा से नीचे वाले में, क्योंकि वो यूज ही नहीं करता, तो उसी लाइन का आदमी तो हुआ। वो यूज करे तो उसको आप थोड़ा कहेंगे भाई ये अमीर हैं। तो आप मनन करो कि मेरे में ये कमजोरी क्यों है। अपने आप पर गुस्सा मत करो, लेकिन मनन करो, विचार करो। कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल लेखक, जैसे मेरे जगदीश भाई थे, प्रोफेशनल तो नहीं थे लेकिन बाबा का वरदान था उनको। आपने पिछले जन्म में जगदीश भाई को देखा होगा, हाँ, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी जो बचपन से ज्ञान में है, जब से जन्म लिया, वो जरा हाथ खड़े करो, क्योंकि माता पिता ज्ञान में होते हैं तो बच्चे जन्म से ही, हाँ, मेजॉरिटी, तो इसका मतलब आपका पिछला जन्म ज्ञान का था, इसलिए आप इस जन्म में आ गए फटाफट ज्ञान में। तो पिछले जन्म में आपने जगदीश भाई को जरूर देखा होगा, बाकियों ने भी देखा होगा। तो जगदीश भाई का ये जो था ना, ये भरा ही रहता था, जैसे कहते हैं ना दूध में उफान आया ही हुआ है, वो भरा ही रहता था, लिखवाते जाते थे, लिखने वालों के हाथ दर्द करने लगते थे, लेकिन उनका ख़त्म नहीं होता था, बहुत मनन था उनका, वरदान था बाबा का। एक ही सीटिंग में वो कितना लिखते थे, और फिर जब बीच में फ़ोन वोन आ गया, दोबारा लिखेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, पूछेंगे भी नहीं कि मैंने कहाँ से छोड़ा था, इतनी कंसंट्रेशन थी। लेकिन उनका लाइफ बहुत ही ऋषियों जैसा था। 2 बजे उठना, मेडिटेशन, फिर सुबह सुबह लिखना, फिर देखो यज्ञ के इतने प्रोग्राम बनाना, फिर लाइफ बिल्कुल सादा, एकदम थोड़ा सा भोजन और एक छोटे से कमरे में, कोई चीज़ की डिमांड नहीं, और अपने हिस्से की चीज़ें भी सबको दे देना, कुछ अपने लिए चाहिए नहीं, इतना बड़ा भाई यज्ञ का, त्याग बहुत था। जिस व्यक्ति का मन त्यागमय है, उसके मन में जो थॉट आती है ना, वो बहुत हाई क्वालिटी के आते हैं। जिसका जीवन भोग में लिप्तमान है, उसके थॉट्स ऊंचाई तक जाते ही नहीं, वो नीचे ही रह लेते हैं। तो जीवन में आप देखेंगे जिन्होंने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, या जिनके विचारों को अपन पढ़ते हैं, भाई बर्नार्ड शाह के विचार, महात्मा गांधी के विचार, अमुक के विचार, दुनिया में भी ये वही लोग थे जिनका जीवन त्यागमय था। बाकी अपन ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं कि पटियाला के महाराजा के विचार, के फलाने के विचार, नहीं, जिनका जीवन भोगमय था उनके विचार पैदा ही नहीं होते, उनको कोई याद ही नहीं करता। तो मनन के लिए पहली शर्त है कि जीवन त्यागमय हो, सादा हो, देने की भावना हो और एक एक सेकंड को सफल करने का भाव हो। क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे कि जी मुझे टाइम नहीं मिलता। देखो हम जब शुरू शुरू में सेंटर पे गए ना, अभी तो सेंटरों के माहौल बदल गए। आज से मैं आपको 26-27 साल पहले की बात सुना रही हूँ, तो तब तो सेंटरों पे ना माइयाँ होती थी ना कोई नौकर होते थे, हैं सब काम अपने हाथों से करते थे। और हम लोग तो बहुत व्यस्त होते थे, सुबह 7 बजे दिनचर्या शुरू होती थी, मुरली 7 बजे पूरी और रात को 10 बजे तक दिनचर्या चलती थी। कितने घंटे हो गए देखो, मुरली उठना तो वही 3:30 है, लेकिन 3:30 तो चलो कम काम तो नहीं होता ना, काम तो 7 बजे मुरली के बाद ही शुरू होगा। हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे से काम छुड़ा लो और मैं कुछ लिखूं कुछ पढ़ूं, कहोगे क्या ऐसे? और ऐसा संभव है क्या? लेकिन आपको सेवा करते करते ही तो मन को मनन में लगाना है ना। सेवा छोड़ोगे तो भी संगठन में रहोगे, किसी के ख्यालात चलेंगे, ठीक से सेवा नहीं करोगे तो भी ख्यालात चलेंगे। और ही दूसरों को सुख दोगे तब मन में बढ़िया विचार आएंगे, ऑटोमेटिक बाबा अपने आप करेगा। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता था कि बहन जी ने कहा भाषण करना, लेकिन काम इतना है सेंटर पे, सेवा इतनी है, मान लो ब्रह्मा भोजन है, आप 7 बजे लगे और 11 बजे तक आप ब्रह्मा भोजन की तैयारी में रहे और 11 ही बजे आपको जाके भाषण करना है, तैयारी तो नहीं हुई ना। लेकिन चूंकि आप बाबा की सेवा कर रहे थे ईमानदारी से सच्चे दिल से, तो आपको बाबा स्टेज पे जैसे ही जाके बैठोगे ना थॉट्स दे देगा, दिल सच्चा तो मुराद हासिल। लेकिन कोई छिप छिपा करके काम छोड़ छाड़ करके और जाके मैं मनन करूं, वो जैसे ही संदली पे जाके बैठेगा सारा भूल जाएगा। ये भी देखो कर्मों की गुह्य गति है। तो हम लोग सफाई करते थे शुरू शुरू में। आपको पता है जब गुरुओं के पास भी चेले जाते हैं ना, टाइम हो रहा है बस मैं पूरा कर रही हूँ, तो उनको झाड़ू लगवाते हैं, कहते हैं इनका देह अभिमान टूट जाना चाहिए। तो यहाँ बाबा के घर में भी ऐसा ही नियम है, कन्याएं आती हैं तो उनको झाड़ू सफाई ताकि देह अभिमान टूट जाए। लेकिन ये सेवा सबसे अच्छी है, मैं आपको बताऊँ सबसे बढ़िया सेवा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टोकाटारी नहीं करता। बाकी सब सेवाओं में टोकाटारी है, सब्जी में तेल ज़्यादा डाल दिया, नमक कम डाला, बढ़िया है और भुनो इसको, कच्ची रह गई, पानी कम है, सूखी ज़्यादा हो गई, देखने वाला कुछ कुछ बोल, झाड़ू में कोई आके नहीं कहता, शांति से लगाओ अच्छी बाबा के ज्ञान का मनन करो। तो देखो हम बिजी रहते थे लेकिन मन तो खाली था ना, हाथ बिजी थे तो क्या हुआ, मन तो खाली है ना, तो झाड़ू लगाते जाते थे, ज्ञान का मनन करते जाते थे। लोग कहते थे बहन जी तुम इतना बिजी रहती हो तुम लिखती कब? मैं कहती थी मैं बिजी कहाँ हूँ, मन तो आत्मा तो बिजी नहीं है ना, हाथ बिजी है, हाथ बिजी होने से क्या होता, मन तो फ्री है, आपको मन से विचार करना है ना, हाथ से थोड़े विचार करना है। तो अभी मनन करना सीख गए, टाइम हो रहा है, सीख गए। अच्छा अभी किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। हाँ हाँ बोलो बहन जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ एक कविता लिखी है भाई, इसने कविता सुनानी है, बताओ। मम्मा वाली है, मेरे सपनों का भारत। हाँ कविता ही लिखने के लिए बोला था क्या? मनन का था। अच्छा तो बोलो, सुने सुनाए। हाँ आओ बहन जी। और किसी को कोई पूछना हो तो बोलो भाई। हाँ अच्छा, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ भाई। सभी संतुष्ट आत्माएं हैं।
ओम शांति। मेरा टॉपिक है मेरे सपनों का भारत। स्वर्णिम युग सा भारत होगा, मानव होगा देव समान, भाषा धर्म एक ही होगा, सब में होगा आत्मिक भान। जीवन होगा सतो प्रधान, प्रकृति होगी मन भावन, दिव्य गुणों से श्रृंगार होगा, मानव होगा संपूर्ण पावन। सात्विक हमारा भोजन होगा, जल होगा अमृत जैसा, कोयल जैसी वाणी होगी, तन होगा मंदिर जैसा। संकल्पों की दुनिया होगी, मन से उड़ते जाएंगे, सैर सपाटा करने को उलन खटोले आएंगे। महल बनेंगे सोने के, मनोहारी उपवन होगा, पशु पक्षी भी साथ रहेंगे, वहाँ ना कोई विघटन होगा। ऐसा स्वर्णिम भारत होगा, स्वर्ग धरा पर लाएगा, नर बनेगा नारायण, नारी लक्ष्मी सी होगी। ओम शांति।
दीदी इनके मंथन को क्या ग्रेड?
ए ग्रेड दो भाई।
ए ग्रेड।